तः भजामि भवभीतिहरं सुरेशम्।
महाकाल की नगरी उज्जैन से
गंगाधरं वृषभवाहनमं।
उज्जैन डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं उज्जैन डायरी, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले चलता है उज्जैनी नगरी की धड़कनों तक, जहां धर्म, संस्कृति, परंपरा और प्रशासन सब मिलते हैं एक सुर में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल पवार, और आज हम साथ मिलकर श्रावण माह की शिवमय छाया में डुबकी लगाएंगे।
नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे।
श्रावण का मंगलवार, सुबह 3 बजते हैं और श्री महाकालेश्वर मंदिर के कपाट खुलते हैं। शंख डमरू घंटियों की ध्वनि और श्रद्धा की अपार लहर। सभा मंडप में सबसे पहले वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन किया जाता है, घंटी बजाकर भगवान से आज्ञा ली जाती है और फिर चांदी के पट खोले जाते हैं। गर्भगृह के पट खुलते ही महाकाल के दिव्य श्रृंगार का दर्शन होता है। पुजारियों ने पंचामृत से अभिषेक किया, कर्पूर आरती हुई, त्रिनेत्रधारी भगवान महाकाल को त्रिपुंड चंदन रजत मुकुट रुद्राक्ष की माला और भस्म अर्पित की गई। नंदी हॉल में भी पूजन और ध्यान संपन्न हुआ। भगवान को जल, दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति में जब भस्म आरती हुई, तब महाकाल ने निराकार से साकार रूप में दर्शन दिए और यही इस पूजा की विशेषता है। श्रावण के चौथे सोमवार को निकली भगवान महाकाल की सवारी। सभा मंडप में पालकी का पूजन हुआ, फिर जब भगवान पालकी में विराजे तो मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल ने उन्हें सलामी दी। इस बार के विशेष स्वरूप थे पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, गजराज पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव और नंदी रथ पर श्री उमा महेश के रूप में। घुड़सवार पुलिस, भजन मंडली, छांज मंजीरा, पुलिस बैंड सब इस महायात्रा का हिस्सा बने। रामघाट पर विशेष पूजन हुआ, फिर महाकाल मंदिर पर सवारी की वापसी हुई और दोपहर तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान के दर्शन का लाभ ले चुके थे। श्रावण के पहले सोमवार को 2,50,000 श्रद्धालु, दूसरे सोमवार को 3,00,000 श्रद्धालु और तीसरे सोमवार को 5,00,000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई।
अकादमी की ओर से
आप
श्री महाकाल छत्तीस व्यापारी एसोसिएशन आप सभी का स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है।
और अब बात उज्जैन के प्रशासनिक हलचलों की। IAS अभिलाष मिश्रा को उज्जैन नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ कृतिका भीमावत को संयुक्त कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। इन नियुक्तियों से शहर के विकास और व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगली खबर पर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2025 की घोषणा कर दी है। 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को 8 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा का लाभ मिलेगा। शुरुआत उज्जैन, आगर मालवा, विदिशा और सीहोर जिलों से होगी। पहली खेप वाराणसी और अयोध्या की यात्रा पर जाएगी। इस योजना के लिए अंतिम तिथि 9 अगस्त रखी गई है। आवेदन और जानकारी के लिए धर्मस्व विभाग की वेबसाइट पर जाएं, जिसका पता है www.dharmasva.mp.gov.in। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में BE प्रथम वर्ष की 37 रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग शुरू हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अगस्त रात 11:45 तक है। 6 अगस्त को कॉलेज में उपस्थित होकर मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश लिया जा सकेगा। अगर सीटें फिर से रिक्त रहती हैं तो 7-10 अगस्त तक फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे। और अब एक अच्छी खबर, उज्जैन की बेटी चारवी मेहता ने गोवा में आयोजित 24वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कमाल कर दिया। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए हरिद्रा शोध पत्रिका के संपादक से हमारी की गई विशेष बातचीत उज्जैन के संदर्भ में।
नमस्ते, मैं विजय त्रिपाठी हरिद्रा शोध पत्रिका का संस्थापक एवं मुख्य संपादक हूं। आज मैं उज्जैन की इस पवित्र धरती पर खड़ा हूं, जहां माँ शिप्रा की लहरें और बाबा महाकाल का आशीर्वाद हवा में गूंज रहा है। इस शहर का हर कोना जैसे मुझे बुलाता है अपनी कहानियां सुनाने के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारी में नया इतिहास रच रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमारी संस्कृति, विकास और भविष्य को एक साथ जोड़ रही है। उज्जैन आज बदलाव की राह पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 को भव्य बनाने के लिए 18,840 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शिप्रा नदी के 29.21 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण हो रहा है जो बसाल्ट पत्थरों से बनाए जा रहे हैं ताकि स्थायी हों और भविष्य के सिंहस्थों के लिए भी उपयोगी रहें। कान नदी के दूषित जल को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए 30.15 किलोमीटर की बाईपास परियोजना शुरू हुई है जिसमें 6 किलोमीटर लंबी सुरंग और 11 बैराज बनाए जा रहे हैं। यह परियोजना 13 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा शुरू की गई थी। उज्जैन इंदौर के बीच 6 लेन हाईवे और मेट्रो लाइन का काम भी जोरों पर है ताकि 15 करोड़ श्रद्धालुओं का सफर आसान हो। रेलवे स्टेशन जैसे न्यू खेड़ी और विक्रम नगर को AI बेस्ड क्राउड कंट्रोल और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है। उज्जैन स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्मार्ट बस, शेल्टर, एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली और GPS बेस्ड वाहन ट्रैकिंग जैसे आधुनिक कदम उठाए जा रहे हैं। यह सब देखकर लगता है उज्जैन न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि एक स्मार्ट तीर्थ नगरी बनने की ओर बढ़ रहा है। उज्जैन वैसे भी सांस्कृतिक और शोध परक गतिविधियों का केंद्र रहा है। उज्जैन की सांस्कृतिक धड़कन आज भी उतनी ही जीवंत है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती जो हर सुबह 4 बजे होती है दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के तहत उज्जैन के हस्तशिल्प और मालवी व्यंजनों को प्रचारित किया जा रहा है। स्थानीय युवा अपने स्टार्टअप के जरिए हस्तशिल्प और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को सिंहस्थ में प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। अगर हम शोध की बात करें तो IIM इंदौर सिंहस्थ 2028 के लिए 5E फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है जिसमें ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए AI बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं। उज्जैन महाकुंभ हैकाथन ने भी युवाओं को अपने नवाचार साझा करने का मंच दिया है जिसमें स्मार्ट मोबिलिटी, डिजिटल अनुभव और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जैसे विषय शामिल हैं। स्थानीय विश्वविद्यालय जैसे उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय सिंहस्थ की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्ता पर शोध कर रहे हैं ताकि इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। यह देखकर गर्व होता है कि उज्जैन अपनी जड़ों को सहेजते हुए आधुनिकता को गले लगा रहा है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां उज्जैन को एक नया रूप दे रही हैं। सरकार ने 50,000 बायो टॉयलेट और 500 अस्थायी अस्पतालों की योजना बनाई है ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। मथुरा और पंढरपुर जैसे तीर्थों से प्रेरणा लेते हुए उज्जैन में स्मार्ट फैसिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां डिजिटल सूचना पटल, CCTV निगरानी और ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं होंगी। साधु संतों के लिए स्थायी आश्रम बनाने का निर्णय भी लिया गया है जैसे हरिद्वार में है। 27 मार्च से 27 मई 2028 तक चलने वाले इस महापर्व में 3 शाही स्नान और 7 पर्व स्नान होंगे जिनके लिए 42,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती और डिजिटल नेविगेशन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सिंहस्थ न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का प्रतीक होगा। यह सब देखकर लगता है कि उज्जैन 2028 में दुनिया को अपनी विरासत और प्रगति का अनूठा संगम दिखाएगा। उज्जैन आज एक सपने को जी रहा है जहां माँ शिप्रा का पवित्र जल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद और आधुनिक विकास का तालमेल एक नई कहानी लिख रहा है। सिंहस्थ 2028 सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी एकता, आस्था और प्रगति का उत्सव है।
ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरण युगम। भूमयादिर्व सुमंगल विग्रह या लिंगित वा मांग विभो
अब हमसे जुड़ रहे हैं द्वारकाधीश चौधरी, जो उज्जैन के निवासी है, विधि विशेषज्ञ है और ये हमें उज्जैन में हो रही गतिविधियों से अवगत कराने जा रहे हैं।
द्वारकाधीश चौधरी, उज्जैन में धार्मिक कार्यक्रम आए दिनों होते रहते हैं। उसी तारतम्य में हरियाली अमावस्या पर आस्था का स्नान शिप्रा नदी में हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण का कार्यक्रम शहर में अनेकों स्थानों पर हुआ है, चाहे वो बगीचे हो, न्यायालय परिसर हो, अस्पताल हो या शासकीय भवन हो, वहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और हजारों वृक्ष लगाए गए हैं। श्रावण सवारी सोमवार को महाकालेश्वर प्रांगण से प्रारंभ हुई, जिसमें 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने राजा भक्त महाकाल के दर्शन किए हैं। राजा महाकाल अपनी प्रजा को देखने निकलते हैं और प्रजा को देखने के लिए इसलिए निकलते हैं कि उनकी प्रजा दुखी तो नहीं है। राजा अपनी प्रजा को देखने स्वयं शहर में प्रमुख मार्गों से निकलते हैं और संध्या के समय वापस महाकालेश्वर पहुंचते हैं। उसके बाद संध्या आरती होती है। नागपंचमी का पर्व, जिसमें 8.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर के दूसरी सतह पर बने 11वीं शताब्दी की मूर्ति के दर्शन किए हैं। नागपंचमी की जो मूर्ति है वो अद्भुत मूर्ति है, अद्वितीय मूर्ति है। वो इसलिए अद्वितीय है कि भगवान शिव के ऊपर सर्प नहीं होते हैं और शेषशायी भगवान शिव के यहाँ है, जबकि शेषशायी भगवान विष्णु को होती है। महाकालेश्वर में आए दिनों नवीन कार्य हो रहे हैं। उसी तारतम्य में महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा श्रावण महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और श्रावण महोत्सव का ये 20वां वर्ष है, जिसके तहत प्रत्येक शनिवार को श्रावण महोत्सव में शास्त्रीय गायन, बांसुरी वादन, सरोज वादन, कथक नृत्य, ओडिसी नृत्य त्रिवेणी संग्रहालय में हो रहे हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु और दर्शक उन कलाकारों को देखने आ रहे हैं जो प्रदेश और देश से आए हुए हैं। देश के प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा शहर में टावर पे और गोपाल मंदिर पर भी दूरदर्शन के माध्यम से उन कलाकारों के प्रदर्शन को दिखाने की व्यवस्था की गई है। आगामी रक्षाबंधन जो 9 अगस्त को होने वाला है, महाकालेश्वर मंदिर में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगता है। राखी भी भस्मा आरती के दौरान सर्वप्रथम महाकालेश्वर को बनती है और महाकालेश्वर में राखी बनने के बाद पूरे शहर में रक्षाबंधन बनाया जाता है। रक्षाबंधन को जो 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगता है, वह भस्म आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी पर गोपाल मंदिर पर भगवान द्वारकाधीश की मंदिर है, वहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है और जन्मोत्सव का कार्यक्रम को देखने हजारों श्रद्धालु रात्रि 12 बजे गोपाल मंदिर पर आते हैं और वहाँ आतिशबाजी भी होती है। जन्माष्टमी पर सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा विद्या अध्ययन करने आए थे, वहाँ भी जन्माष्टमी पर धार्मिक आयोजन होता है। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर नारायणा ग्राम में भगवान कृष्ण और सुदामा जहाँ लकड़ी बीनने गए थे गुरु माँ के आदेश से, वहाँ लकड़ी बीनने के दौरान पानी आने से लकड़ी छोड़कर भगवान कृष्ण और सुदामा जी आ गए थे। आज भी वहाँ लकड़ी का एक पुट्टल टाइप बना हुआ है और जहाँ हरा भरा हो रहा है वो वृक्ष 5135 साल पूर्व का बताया जाता है। यादव समाज द्वारा भी जन्माष्टमी पर विशाल जुलूस शहर में निकाला जाता है और वह विशाल जुलूस हजारों की तादाद में नारायण ग्राम पहुँचता है जहाँ भगवान कृष्ण सुदामा की मूर्ति है और वहाँ मनोरमी दर्शन भी होते हैं जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रातः से रात्रि तक भगवान के दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस विभाग द्वारा शहर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत नशे से मुक्ति के लिए हस्ताक्षर अभियान एवं स्लोगन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा साइकिल रैली भी निकाली गई और नशा मुक्ति के लिए उन्होंने अभियान जारी किया है जिसकी आम जनता में सराहना की जा रही है। श्रावण मास में शहर में स्थित 84 महादेव में भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाहर से आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसकी दौरान ही पंचकोशी यात्रा मार्ग जो 118 किलोमीटर का होता है उसकी चारों दिशाओं में उज्जैन शहर की जहां एक ओर कायावरणेश्वर का मंदिर है, दूसरी ओर पिंगलेश्वर है, आगर रोड की ओर दूधेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं गंभीर घाट के पास बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है जो शहर से दूर भी है किंतु वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने जाते हैं क्योंकि वह 84 महादेव में आते हैं और 84 महादेव का मंदिर पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर है और उनका सभी मंदिरों का अलग अलग महत्व है। उन मंदिरों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए दूर दराज से श्रद्धालु 84 महादेव के दर्शन करने आते हैं। श्रावण मास में अभी तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। उज्जैन शहर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है। चारों ओर शहर में उज्जैन में महाकाल को लेकर नारे गुंजायमान हैं। उज्जैन में आनंद भयो, जय महाकाल की, ओम नमः शिवाय, भगवान महाकाल के नाम से उज्जैन गुंजायमान हो रहा है। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती है, जिस ओर देखो श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं।
और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन से सौरभ गुप्ता जो हमें बताने जा रहे हैं नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के विषय में।
नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं एडवोकेट सौरभ गुप्ता, नाग चंद्रेश्वर मंदिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। नाग चंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन शहर में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के परिसर के तीसरे तल ऊपरी मंजिल पर स्थित है और इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यह मंदिर सिर्फ एक दिन नाग पंचमी के दिन ही दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है। यह मंदिर मुख्यतः शेष नाग पर विराजमान भगवान शिव और मां पार्वती की दुर्लभ प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा में भगवान शिव नागराज शेष नाग के फनों पर विराजमान है जो बहुत ही अद्वितीय मूर्ति मानी जाती है। यह प्रतिमा दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है जिससे यह संभावना मानी जाती है कि इसका निर्माण दक्षिण भारत के किसी कलाकार या वास्तुकार ने किया हो। इस मंदिर को साल में एक बार नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता स्वयं प्रकट होकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसलिए विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार शेष नाग ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं शेष नाग पर विराजमान रहेंगे। यह भी माना जाता है कि नाग चंद्रेश्वर की पूजा करने से सर्प दोष, काल सर्प दोष और कुंडली में ग्रह दोष शांत होते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के ऊपर बना हुआ है। इसे बहुत ही सुंदर और रहस्यमय ढंग से डिजाइन किया गया है ताकि ऊपरी तल की पूजा नीचे की गतिविधियों को प्रभावित ना करे। केवल विशेष सीढ़ी से तीसरी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है और सुरक्षा कारणों से यह हर समय खुला नहीं रखा जाता। नाग पंचमी पर दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। प्रशासन विशेष प्रबंध करता है। दर्शन का समय आम तौर पर सूर्योदय से लेकर देर रात तक होता है। आप नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो नाग पंचमी का दिन सर्वोत्तम है। यह वर्ष में एकमात्र अवसर होता है जब आपको इस दिव्य मूर्ति के साक्षात दर्शन करना को मिलते हैं। जय श्री महाकाल।
और अब समय है श्रोताओं की सहभागिता का। आप हमें पत्र लिख सकते हैं अपने अनुभव पर, श्रद्धा की बातों पर या उज्जैन से जुड़ी कोई विशेष स्मृति पर। हमारा पता है केंद्र निदेशक आकाशवाणी इंदौर, मालवा हाउस रेसिडेंसी एरिया इंदौर, पिन कोड नंबर 454001। तो श्रोताओं, ये थी आज की उज्जैन डायरी। श्रावण माह की शिवमयी छाया हम सबके जीवन में शांति, शक्ति और श्रद्धा का संचार करे। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे उज्जैन की किसी नई कथा, किसी नए रंग और किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री महाकाल।
प्रातः भजामि भवभीति हरं सुरेशम्।
महाकाल की नगरी उज्जैन से
गंगाधरं वृषभवाहनमं।
उज्जैन डायरी।